SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
Need a few minutes to reset? Great Minds is a podcast from SBS that guides you through different meditation styles from around the world. Listen wherever you get your podcasts.
दोस्तों, इस वर्ष ऑस्ट्रेलिया में वर्कर्स के अधिकारों के बारे में खूब चर्चा हुई है। ऐसा खास तौर पर संसद द्वारा राइट टू डिस्कनेक्ट के अधिकार पर कानून बनाए जाने के बाद हुआ है। लेकिन जब बात आती है कि आपको काम पर कैसे बनकर जाना चाहिए, तो आपकी कंपनी आपके सामने क्या मांगे रख सकती है, आइए जानते हैं। कंपनियों द्वारा ड्रेस कोड लागू करना कितना सही है और कितना नहीं, इस बात पर अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। अधिकांश कार्यस्थलों में किसी न किसी प्रकार का ड्रेस कोड होता है, चाहे फिर वे एक समान के कपड़े पहनना हो या फिर कर्मचारी कैसे दिखेंगे इसकी न्यूनतम अपेक्षाओं को सूचीबद्ध करना। ऐसे में कुछ कंपनीज में ये जो ड्रेस कोड है, ये बाकी कंपनीज की तुलना में थोड़ा कठिन होता है। इसमें मेकअप करने की आवश्यकता और टैटू और पियर्सिंग पर प्रतिबंध भी शामिल है। तो क्या आपके एम्प्लॉयर्स आपको कार्यस्थलों पर मेकअप करने के लिए बाध्य कर सकते हैं? ऐसे में यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी सिडनी में बिजनेस स्कूल के साथ रोजगार कानून के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर गिसीपी कैरेबिट का कहना है कि नियोक्ताओं को इस ड्रेस कोड को लागू करने की अनुमति है।
Employers have a right to issue lawful and reasonable orders. That comes from England and comes from the common law, and it's still there. And that is basically the source of these policies. Basically, the courts and the tribunals in Australia, in the UK, and even in other places have said that, broadly speaking, dress codes fall under that category.
इस ड्रेस कोड में कर्मचारी किस प्रकार से ऑफिस आने चाहिए, इस बात को लेकर एक निश्चित स्तर की मर्यादा की आवश्यकता शामिल हो सकती है, जैसे कि टाई पहनना, यूनिफॉर्म की आवश्यकता या अन्य पोशाक मानक जो कि कार्यस्थल में व्यावसायिकता के स्तर को बनाए रखें। ऐसी चीजें पहनना जो कि वर्कर्स की पर्याप्त सुरक्षा करें, जैसे कि बंद जूते, इस तरह की मांग भी नियोक्ता कर्मचारियों के आगे रख सकते हैं। डॉक्टर कैरेबिट का कहना है कि इस ड्रेस कोड में अधिकांश चीजें शामिल हो सकती हैं, जब तक कि वे कर्मचारियों के मानव अधिकारों यानी कि ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन नहीं कर रही।
Anything that doesn't trigger anti-discrimination laws, you've really got to be careful not to be gender specific. You've probably seen the UK case where I think it was a receptionist and she was told to go home for not wearing heels, which is absolutely, you know, just crazy. And any reasonable, informed individual would think that's nuts. But, you know, because that is gender specific and it's female specific, that would be problematic from the employer's perspective.
बात करें मेकअप की, तो क्या आखिर मेकअप भी ड्रेस कोड में आता है? अधिकांश कानूनी प्रश्नों की तरह ये सवाल भी जरा जटिल है। डॉक्टर कैरेबिट का कहना है कि यदि नियोक्ता इसे आवश्यकता बना रहे हैं, तो उन्हें बहुत ही संवेदनशील होने की जरूरत है।
They have to be very careful there. So if they're directing that at females only, that could be problematic. There might be certain roles in a service type industry where maybe you're selling makeup, then there might be an exception there.
24 वर्षीय रिति जेरट, जो कि एक डिजिटल मार्केटिंग कंपनी में काम करती हैं, मानती हैं कि इस तरह की पॉलिसीज को उन्हीं इंडस्ट्रीज में लागू करना चाहिए जहां ऐसी चीजों की आवश्यकता हो।
मेरे पास जो टैटूज और पियर्सिंग्स दोनों है, तो मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि ये गलत रूल है, क्योंकि लोगों का ओपिनियन है इस पे कि उनको चाहिए नहीं चाहिए, और ये किसी इंडस्ट्री या कंपनी पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। एंड बिकॉज मेकअप आई थिंक वो पर्सनल चॉइस होती है लोगों की, वो ऑफिस करके जाए या ना करके जाए, बट इट डिपेंड्स ऑन, अगर वो फैशन इंडस्ट्री है तो मैं मान सकते हैं कि चलो मेकअप और ड्रेसअप होना बहुत जरूरी है, बट अगर वो कोई आईटी है, सॉफ्टवेयर है, कंसल्टिंग कंपनी है, तो उसमें इम्पोर्टेंट नहीं होती, तो मेकअप से जाओ, इसके साथ ही आपको भी थोड़ा वेल ड्रेस।
ऐसे भी कार्यस्थल हैं जो कि अलग अलग जेंडर्स के लिए अलग मानकों को पेश करते हैं। इसमें महिलाओं को मेकअप लगाना और पुरुषों को टाई पहनना शामिल हो सकता है। डॉक्टर कैरेबिट का कहना है कि ये तब तक जायज है जब तक कि एक जेंडर से दूसरे की तुलना में अधिक प्रयास करने की अपेक्षा न की जाए।
So the courts and the tribunals tend to say, by definition, you are allowed to do that to a point, okay? But where they can get into serious trouble is again if they're imposing a gender-specific requirement and then they're not treating the other gender or the other sex with an equivalent in broad terms requirement.
Dr. Carabit कहते हैं कि ड्रेस कोड में क्या उचित है और क्या नहीं, ये केवल पॉलिसी में लिखी बातों पर निर्भर नहीं करता है.
It's not just about whether you have a valid ground to dismiss someone. So the Fair Work Commission, it basically regulates what's called unfair dismissal. And the unfair dismissal laws, they are about ensuring that employees are not dismissed in a way that's harsh, unjust, or unreasonable. So that's a lot broader than saying, okay, do we have a valid policy and do we have a valid ground to dismiss you?
यदि कोई अनुचित बर्खास्ती यानी कि अनफेयर डिसमिसल का मामला फेयर वर्क कमीशन तक पहुंचता है तो डॉक्टर कैरेबिट कहते हैं कि ऐसे कई कारक हैं जिनको ध्यान में रखा जाना चाहिए।
If the policy hasn't been communicated to all the employees, that's one thing that could get them in trouble. If it's not applied consistently, that's another thing. If it's introduced retrospectively, also the policy needs to be proportionate to the actual behaviour. If the policy is not actually relevant to the job is another factor. So, okay, you're saying that I need to cover my tattoos, but I'm not actually in a client-facing role. So what's the point of that?
भले ही कुछ लोग समझें कि ड्रेस कोड लगाना अनुचित है, डॉक्टर कैरेबिट का मानना है कि कर्मचारियों के लिए इसे चुनौती देना आसान नहीं होगा।
Not all employees, but most employees, by definition, are really kind of powerless. Let's say if you're a casual, for example, and you don't have representation through, you know, these days a union, you're concerned that if you do push back, that you might lose, you know, you might win the battle, but you'll lose the war, you might lose your next shift, that kind of thing. But more formally, if they actually terminate you, then there's good news for employees and it becomes a lot harder for the employer.
साथ ही वे बताते हैं कि अगर किसी कर्मचारी को ऐसे किसी मुद्दे पर नौकरी से निकाल दिया जाता है, तो इस विवाद को आगे ले जाना उन पर निर्भर करता है.
If you're willing to go down that track and you do it in time, so there's a time limit, I think it's 21 days at the moment, the unfair dismissal route is fairly accessible, certainly more accessible than, say, you know, going to a normal court, so it's a tribunal. But then you've got, again, the political side to it. Do you want to take the risk? Do you want to be on the record? Do you want to be known in a sector as that person?
इस पूरे मुद्दे पर उनका मानना है कि स्वास्थ्य और सुरक्षा को ही मद्देनजर रखते हुए इन पॉलिसीज को लागू करना उचित होगा।
One thing that will work in employers' favour is where they can point to a health and safety obligation on their part to justify a policy. So we had a butcher who wanted to wear a nose ring, and the employer argued that no, for health and safety reasons, you cannot do that. So it's almost like workplace health and safety. It can trump other factors.
रिति का मानना है कि प्रोफेशनलिज्म को कपड़ों के आधार पर मापना पूरी तरह से जायज नहीं है.
मुझे बिल्कुल सही लगता है क्योंकि पर्सनल चॉइस भी एक होती है. जर्नलिस्ट अगर एक साड़ी पहन के नहीं आया तो वो जर्नलिस्ट हो नहीं है, ऐसा थोड़ी होता है. मतलब वो कोई वेस्टर्न आउटफिट में भी है तो जर्नलिस्ट तब भी वैसा ही जर्नलिस्ट है, वो अपना काम देखना भी अच्छा कर रहा हो. इट्स नॉट डिपेंडेंट ऑन द आउटफिट.
वो ये भी मानती हैं कि शायद ऐसी पॉलिसीज को लागू करने के बाद लोग अपनी मल्टी कल्चरल पोशाकें यानी कि अपने मूल देश के ट्रेडिशनल आउटफिट्स पहनना कार्यस्थलों पर कम कर देंगे.
आई थिंक जैसे इंडियंस कभी कभार साड़ी पहन के चले जाते हैं या कुछ ट्रेडिशनल पहन के जाते हैं, वो पहनना फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा. और उनके इंडियन आइडेंटिटी कम जाएगी बेसिकली, क्योंकि इसमें ब्लेंड होने के लिए उनको यू नो डिफरेंट वेस्टर्न आउटफिट्स पहन के जाना पड़ेगा.
रानिया यालप की इस खबर को SBS हिंदी में आप सबके लिए प्रस्तुत किया भव्या पांडे ने.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.